6245. You know, that's known as... Because let's go to the Prime Minister of Pakistan, United Nations. Prime Minister ne angrezi ka intikhab kiya, bahut behtareen kiya. Har insaan tak jayegi. You know what? Mere aur aap pe depend karte hue aap dekh lijiyega. Hum baaz kaam karna chahte hain magar waqt ke kami ki wajah se hum wo nahi kar pate. Urdu ki taqreer hai usko translation ke sath jab internationally dekha jana tha different jagahon ke har ek ke paas
effect nahi aata.
Translators translation ki sahulat maujood nahi thi to wo effect nahi hona tha. He just wanted to convey the point of view. Unhone bade khoobsurat tareeke se apni field ko bichhaya. Unhone ice breaking ki hai and now aate aate yani Muslims ko radical Islam Muslims ke baare mein baat karte hue, let's go to the Kashmir now. The fourth most important point.
The critical point is the reason why I specially came here. It is about what is happening in Kashmir. Before I go on this, I want to make one thing clear, that when we came to power, my first priority was that Pakistan would be a country which will try its best to bring peace. We had been through this war on terror. We joined the United States war on terror after 2001, and Pakistan went through one of its worst periods where 70,000 Pakistanis died and over 150 billion was lost to our economy. And Mr. President, I opposed the war because in the 80s Pakistan had joined the Western countries in what was the freedom struggle then in Afghanistan against the Soviets. And it was funded by the Western countries. These Mujahideen groups, which were treated in guerrilla warfare, were trained by Pakistan Army, funded by the Western countries, and especially US, and they waged what was a freedom struggle in Afghanistan. The Soviets called them terrorists. We called them freedom fighters. 1989, the Soviets retreated. The Americans packed up and left. Pakistan was left with these groups. Come 9/11, Pakistan joined the United States in this war on terror. And now our government was supposed to, the reason why I opposed joining this war, because here we had indoctrinated them in jihad, meaning freedom struggle against foreign occupation. Now, because we had joined the US and the US had occupied Afghanistan, now we were supposed to tell them that no, this is not freedom struggle and jihad, it's terrorism. So that's why I tried to tell then government that, you know, stay neutral because you will have leverage over them. You will be able to control them. But if you join them, you become collaborators and they will attack you, which is what happened. They turned against us. We went through a nightmare. 70,000 people killed in a war we had nothing to do with. No Pakistani was involved in 9/11. Taliban were in Afghanistan, Al-Qaeda was in Afghanistan. What had we to do with it? 70,000 Pakistanis died. So when we came to power, we decided that we would dismantle what was left of these groups. And this decision was taken not just by us, but by all the political parties in Pakistan. Unfortunately, they didn't implement it. So we came to power, we decided to implement it, and we dismantled whatever was left of the groups. And I know that India keeps accusing us that there are these groups there. I would like the United Nations to send observers, see for themselves what we've done. No Pakistani government would have dared to do this because it would have created strife. But we decided that there would be no militant organizations in Pakistan. So I need to give you this background and to what I'm going to say later on. And secondly, we started mending fences. I invited the Afghan president. We developed a relationship with Afghanistan. We had problems with Iran. We mended fences there. And then India. Now let me just give you a little background about my relationship with India. Because of cricket, and cricket being one of the, it's a passion in the subcontinent, I had great following in India. I have friends in India, and I loved going to India. So immediately, when my party came to power, the first thing we did was to immediately reach out to India. And I spoke to President Modi and I said, look, we have similar problems. Climate change, poverty, let's get together. Let's resolve our differences through trade. Let's build a relationship on trust. Prime Minister Modi told me that, you know, there were terrorist attacks from Pakistan. I said, we have problems with you. There are terrorist attacks, which we know are instigated from by India in Balochistan. We caught a spy, Kulbushan Yadav, who admitted what the sabotage going on in Karachi and Balochistan. So we said, look, let's leave that behind. Let's move forward. Our main priority should be our people. The highest number of poor people live in the Indian subcontinent. Unfortunately, didn't make any headways. Our foreign minister was supposed to meet on this in the UNGA last year. India cancelled it. We thought that it's their election coming up. It's a nationalist, ultra-nationalist party. It doesn't want to cozy up to Pakistan. So we thought, okay, we'll wait till the elections. Meanwhile, a 20-year-old Kashmiri boy, whose father said was radicalized by the security forces in Kashmir, blew himself up on an Indian convoy. Immediately, India blamed us. I spoke to the Indian public on television. I said, if you give us any iota of proof, we will immediately take action because we've clamped down on these groups. Rather than sending us any proofs, they sent their jets in, they bombed us. We retaliated. A jet, two of their planes were shot down, one pilot bailed out in Pakistan. We immediately returned the pilot, saying that, look, we do not want any escalation. Rather than taking that as a peace gesture, the entire campaign, almost the entire campaign of Mr. Modi in the election was how he had taught Pakistan a lesson that they had jets had killed 350 terrorists. Complete lie. They had just killed about 10 trees of ours, which was quite painful given that, you know, we are growing all these trees. The election campaign, Mr. Modi used words like, this is just a trailer, the movie is about to start. I went into Pakistan and taught them a lesson. This was the election campaign. Okay, so we thought, you know, us politicians make all these statements to win elections. So, okay, after elections, we'll get back to our normal relationship. Well, the moment the elections ended, we approached India. No response. But then we discovered they were trying to push us in the FATF blacklist to bankrupt us. That's when we realized there was an agenda. And that agenda became obvious on the 5th August when India went against 11 United Nations Security Council resolutions, which say that the Kashmir is a disputed territory and the people of Kashmir have the right of self-determination. They went against that. They went against similar accord, which is about bilateral, sorting out our differences through bilateral means, went against that. They actually went against the Indian Constitution. Illegally, they revoked Article 370, which gave Kashmir the special status. They got an extra 180,000 troops there. Total number of security forces in Kashmir now are 900,000. And they put 8 million people of Kashmir under curfew. Mr. President, now I just briefly want to make the people understand, how can anyone do something like this? And for that, I have to explain to you what is RSS. RSS, Mr. Narendra Modi is a life member of RSS. RSS was an organization that was inspired by Adolf Hitler and Mussolini, came about in 1925. They believed in racial purity, racial superiority. They also believed they were an Aryan race, like the Nazi believed they were an Aryan race. All that I'm saying can be verified. This is the time of information revolution. You can Google all this, what I'm saying. But it is very important for me to explain this to you so you know what is happening in India. This RSS believed in the ethnic cleansing of Muslims from India. At one point, there was racial superiority of the Hindu race. Secondly, it was hatred for the Muslims and for the Christians, because they believed that this golden age of Hindu civilization was stopped because of Muslim rule centuries back and then the British rule of India. So it was racial superiority and hatred for Muslims and Christians. This is openly stated. You look at the founding fathers of RSS, Golwalkar and Savarskar. Just Google them and you'll find out. And this ideology of hate is what murdered the great Mahatma Gandhi in 1948. It was this ideology of hate that made Narendra Modi in 2002 do a pogrom against Muslims in Gujarat when he was the chief minister. He allowed 3 days for these RSS goons who were inspired by the Hitler brown shirts. They actually wear brown shirts. This RSS, the Congress Home Minister gave a statement that in RSS camps, terrorists are being trained. And these terrorists butchered 2,000 Muslims and 150,000 Muslims were made homeless. Narendra Modi could not travel to the US because of that. And I need to make you understand this background before I explain to you that what sort of a mindset would lay siege to 8 million people with 900,000 troops? Women, children, sick people, locked in as animals. In fact, of what I know of England, if 8 million animals were locked in, the RSPCA would have made a lot of noise about it. These are human beings. And Mr. President, what comes with racial superiority, these illusions of Aryan superior race, is arrogance. The two go together. And it's arrogance that makes people make mistakes and do stupid things. Cruel things like what Narendra Modi has done. It's sheer arrogance. And it's arrogance that has blinded him from the fact that what is going to happen when the curfew is lifted? Has he thought about it? This hasn't been thought through. What is he going to do when he lifts the curfew? Does he think that people of Kashmir will quietly accept the status quo because India has changed the constitution and taken away the special status? They'll accept that? Mr. President, 100,000 Kashmiris have died in the past 30 years because they were denied the right given by the United Nations, the right for self-determination. 100,000 have died and 11,000 women have been raped. There are two human rights, United Nations human rights reports on this. The world hasn't done anything because India is a huge market, 1.2 billion people. Sadly, the material prevails over the human. But this has serious consequences. Again, I repeat, that's why I'm here. Look, what is going to happen when the curfew is lifted will be a bloodbath. The people will come out. There are 900,000 troops there. They haven't come to, as Narendra Modi says, he's done this to for prosperity of Kashmir. This is supposed to be for the development. These 900,000 troops, what are they going to do when the demo, when they come out? There'll be a bloodbath. Has he thought it through what happens then? Mr. President, has anyone thought that what happens when there is a bloodbath? What do you think the impact will have on people of Kashmir? What do you think they will think the way they have been boxed in their houses, treated like worse than animals? No rights. Thousands of all the political leadership has been arrested, taken out of Kashmir. Even those Kashmiri leaders who were pro-India have been taken out. 13,000 boys have been picked up and taken to God knows which destinations. So what do they think? What will the people of Kashmir do when they lift the curfew? They will be out in the streets. And what will these soldiers do? They will shoot them. They've already used pellet guns, blinded young boys. In the last 6 years, the 5 years, the oppression that has gone on in Kashmir. And so, Kashmiris will be further radicalized. Mr. President, there will be another Pulwama. And guess what? India will blame us. They're already blaming us. They're saying this. All this is happening because of Pakistan. One of their defense ministers said, there are 500 terrorists lined up on the border to go in. Why would Pakistan send 500 terrorists when there are 900,000 troops? What impact are they going to make? What will they do? And why would? Don't we know that the moment there is some terrorist attack, all that will happen is there will be further cruelty and oppression of the people of Kashmir? We will just give the 900,000 troops to further crush the people of Kashmir. And then we'll give the Indian government an excuse that, look, Pakistan is a terrorist state, and this mantra that has gone on, Islamic terrorism. The moment you use this catchword, Islamic terrorism, the whole world turns away. No one talks about human rights. You can do whatever you want, which is what has happened in Kashmir, because they keep using this word, Islamic terrorism. And this is what they're doing right now. What do we benefit from further increasing the cruelty on the people of Kashmir? And why would we want this? But there is no other narrative left for India. As when they lift the curfew, whatever happens, Pakistan will be blamed, and there is always a danger of another Pulwama. They might come and bomb us again, and then another cycle might start. And what does Narendra Modi think that 180 million Muslims of India are thinking right now? Aren't they watching these Kashmiris stuck inside, like in, for 55 days they've been stuck in? Aren't they watching? What do you think? Don't you think that the Muslims will be radicalized in India? And I'm talking about 180 million people. And when they get radicalized, there will be some incident in India somewhere down the line. Again, we will be blamed. And I'm warning you right now, again, we will be blamed. And Mr. President, what about 1.3 billion Muslims who are watching this? And they know that it is only happening in Kashmir because they are Kashmiri Muslims. This is not happening to Kashmiri Hindus. They know that this is happening because of their religion. So what do you think they will be thinking? What do you think the Jewish community would think if the if there were, forget 8 million, 8,000 Jews stuck like this? What do you think Europeans would think? What do we think? I mean, any human community, if their members are stuck like that, what do you think they will think? Are we a children of a lesser God? Is it not going to cause us pain? And then I'll tell you what will happen. People will, in the 1.3 billion Muslims, someone will pick up arms. I know we've been brought up with films, Western films. This good, decent guy doesn't get justice. He decides to pick up a gun and start seeking justice. There was a film made in New York, famous film called Death Wish. This guy gets mugged by his, and his family, his wife gets killed or something. He can't get justice. He picks up a gun and he goes around shooting muggers. And the whole cinema cheers him on. So what do you think the Muslims are thinking right now? If there is a bloodbath, there will be Muslims becoming radicals, not because of Islam, but because of what they will see, that there's no justice when it comes to Muslims. There were Rohingya Muslims, Myanmar, who are, God knows, almost 1 million people out, ethnic cleansing. What was the response of the world community? So what do you think will be the response of 1.3 billion Muslims? I picture myself. I'm in Kashmir. I've been locked up for 55 days. I've heard about, and there are rapes, Indian Army going into homes, soldiers. Would I want to live this humiliation? Would I want to live like that? I would pick up a gun. You're forcing people. You are forcing people into radicalization. When people lose the will to live, what is there to live for? And this is what, if you can do this to human beings, you are actually radicalizing people. And so, Mr. President, I want to repeat here, this is one of the most critical times. There will be a reaction to this. Pakistan will be blamed. Two nuclear armed countries will come face to face like we came in February. And before we head in that direction, the United Nations has a responsibility. This is why the United Nations came into being in 1945. You were supposed to stop this happening. I feel we are back to 1939, Munich. Czechoslovakia has been taken, annexed. What is the world community going to do? Is it going to appease a market of 1.2 billion, or is it going to stand up for justice and humanity? If this goes wrong, you hope for the best, but be prepared for the worst. If a conventional war starts between the two countries, Mr. President, if a conventional war starts, and anything could happen, but supposing a country seven times smaller than its neighbor is faced with the choice, either you surrender or you fight for your freedom till death, what will we do? I ask myself this question. And my belief is, la ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. And when a nuclear-armed country fights to the end, it will have consequences far beyond the borders. It will have consequences for the world, which is why I repeat I'm here. Because I'm warning you, it's not a threat. It's a fair worry that where are we headed? And I've come here to tell the UN, you've got to, this is a test for the United Nations. You are the one who guaranteed the people of Kashmir the right of self-determination. They are suffering because of that. And this is the time. This is the time not to appease, like in 1939 appeasement took place. This is the time to take action. And number one action must be that India must lift this inhuman curfew, which has lasted for 55 days. It must free all political prisoners, and especially those 13,000 boys that have been picked up. Parents don't know where they've disappeared. And then the world community must give the people of Kashmir the right of self-determination. Thank you.
Sahab, after laying the apne apni maidan ko bichhane ke baad, chautha point was the great point. Kamal ki baatein ki unhone. Narendra Modi sahab ko with all respect ke Pakistan ne har mumkin mein. Bahut se logon ka reservations thi ki kyun Imran Khan bar bar call karte hain. उन्होंने कहा कि हमने उसको मुख्तलिफ मुकाम पे मुख्तलिफ तरीके से महसूस किया कि शायद वो इसलिए उन्होंने एक पल की चीज़ जो कोटेशन की कि जब मैंने मगरबी ममालिक ने तो दहशतगर्दी को इस्लाम के साथ जोड़ दिया है, कोई रेडिकल इस्लाम नहीं है, एक ही इस्लाम है. और वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को मैं उन्होंने इस बात को फोर्थ पॉइंट को शुरू करने से पहले उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे कहता हूँ कि यूनाइटेड नेशंस अपने ऑब्जर्वर्स उस इलाके में भिजाए, हम दिखाते हैं उनको. ठीक है, कोई पाकिस्तान में इस वक्त जहादी तंजीम नहीं है. यहाँ पे उन्होंने ज़िक्र किया पलवामा के वाक़े का कि ये 20 साल का लड़का था, कश्मीर से इसका ताल्लुक था, जम्मू कश्मीर से इसका ताल्लुक था, इसने जो कुछ भी किया. और फिर वो सारा का सारा पलवामा का वाक़ा हमारे ऊपर डाल दिया गया, पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया गया. उन्होंने कहा कि पुलवामा के वाक़े में 20 साल ये कश्मीरी लड़का था, हम पाकिस्तान कतन लड़ाई नहीं चाहता. नरेंद्र मोदी ने अपनी आवाम को भड़काने के लिए ये जो पुलवामा का वाक़ा था इसको अपनी सियासी कंपेन में इस्तेमाल किया, और जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए वो काबिले कबूल अल्फाज नहीं थे. यहाँ से उन्होंने नरेंद्र मोदी का आरएसएस का जब जिक्र किया तो उन्होंने बताया कि आरएसएस क्या है. 1925 में इसका क़याम अमन में लाया गया था. आरएसएस के लोग ब्राउन रंग के कपड़े पहनते हैं. ये हिटलर से मुतासर तंजीम थी. ऑफ कोर्स अगर हम हिटलर का जिक्र करते हैं तो हिटलर ने उस ज़माने में यहूदियों के ऊपर बड़े जुल्म ढाए थे. यानी पूरी के पूरे ख़ानदानों को उन्होंने वो केमिकल सेल्स के बीच में डाल दिया था और उनको मारा था. और आरएसएस जो है ये हिटलर से बहुत मुतासिर तंजीम है. اگر آپ ریڈیکل تنظیم کی بات کرتے ہیں نا تو یہ ہے ریڈیکل تسلیم. بائی دا وے جب وہ تھرڈ پوائنٹ اپنا ریز کر رہے تھے تو جب دہشت گردی کی پوائنٹس کا انہوں نے ذکر کیا تھا, انہوں نے تامل ٹائیگرز کا بھی ذکر کیا تھا جہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہے. تامل ٹائیگرز نے جو کچھ بھی کیا تھا انہوں نے اپنے ملک کے لیے کیا تھا, کتنے لوگوں کو مارا تھا, ان کو بھی دہشت گرد کیوں نہیں کہا جا سکتے. کسی انتہا پسند کو تو اس کی کانسیکوینسز ہوتے ہیں جو ان کو اس طرف لے کے جاتے ہیں. جب انہوں نے آر ایس ایس کے بارے میں ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ آر ایس ایس کے لوگ جو ہیں, اور یہاں پرائم منسٹر نے آج کل کی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ان تمام لیڈرز کو کہا کہ آپ گوگل کر کے دیکھ لیں واٹ از دی فاؤنڈیشن آف آر ایس ایس, ریشل جو سپیریئرٹی کا شکار ہیں یہ لوگ. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بلند تر ہیں, باقی تمام ہم سے نیچے ہیں. بہرحال وہ لوگ گوگل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آر ایس ایس جو ہے وہ ایتھنیکل کلنزنگ پہ بلیو کرتی ہے. ہندوستان میں انہوں نے نریندر مودی کے دور میں 3 دن کے لیے, یہ جو گجرات کا واقعہ ہوا تھا انہوں نے وہاں پہ وہ بھی باور کرایا, کیونکہ پیپل ہیو اے ٹینڈنسی ٹو فرگیٹ کہ وہی گجرات کے واقعے اوپر ٹل نریندر مودی بیکیم دا پرائم منسٹر آف انڈیا ہی واز بینڈ ٹو انٹر ان امریکہ, یعنی
نارتھ امریکہ
میں. یعنی پرائم منسٹر نے, وہ جو پیپل ہیو شارٹ ٹرم میموری, دے وانٹ ٹو ریممبر وٹ دے وانٹ ٹو ریممبر اینڈ دے وانٹ ٹو فرگیٹ وٹ اٹس ایزی ٹو فرگیٹ, تو انہوں نے وہ تمام چیزوں کی یاد دہانی کرائی. انہوں نے ہوم ورک بھی ان کو دیا کہ آپ آر ایس ایس کی بیک گراؤنڈ دیکھیں کیا ہے, کشمیر گجرات کا واقعہ کیا تھا, آر ایس ایس کا آبجیکٹو کیا ہے. یہاں تک کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا جناب, مہاتما گاندھی جو باپو جی ہیں انڈیا کے, ان کا 150th برتھ ڈے منایا جا رہا ہے. ایون کہ آر ایس ایس نے بڑے فخر سے اپنے باپ کو مارنے کا دعویٰ بھی قبول کیا تھا, یعنی مہاتما گاندھی کو مارنے والا شخص بھی آر ایس ایس سے تعلق رکھتا ہے. یہاں پہ انہوں نے لنک کیا کہ نریندر مودی جو ہیں انہوں نے لائف ٹائم ممبر شپ لی ہوئی آر ایس ایس کی. ہاؤ کین ہی بی ڈفرنٹ فرام دا پیرنٹ کمپنی یا جس آرگنائزیشن کو وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ہز آبجیکٹیوز آر ایگزیکٹلی سیم. یہاں سے وہ کشمیر پہ آ جاتے ہیں. اب یہ ساری کی ساری بات کرنے کا, کیونکہ نریندر مودی نے اپنا ہاؤڈی مودی کا جو پروگرام تھا اس نے کہا کہ ان کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے اور یہ ٹیررسٹ پیدا کر رہے ہیں. ایکچولی دس از واٹ دا پرائم منسٹر آف پاکستان وانٹیڈ ٹو سے کہ ٹیررسٹ آر ناٹ پروڈیوسڈ بائی پاکستان. وہ جو 800 million کشمیری ہیں ان کے اوپر 900,000 ٹروپس اگر ہیں اور 55 دن کے لیے ان کو بند کر دیا گیا ہے, اب جب ان کو کھانا نہیں, خوراک نہیں, ظلم ہے, ان کے بچے مر رہے ہیں, ان کی عورتوں کو ریپ کیا جا رہا ہے, اف دے ول گیٹ اے چانس ٹو کم آؤٹ تو وہ پھر وہ ٹیررزم کا کوئی واقعہ کریں گے. دیر ول بی اندر پلوامہ ہوگا اسی جموں کشمیر کے انہی لوگوں کو جو سفر کر رہے ہیں. بلیم کس پہ آ جائے گا؟ پاکستان پہ آ جائے گا. بہت خوبصورت طریقے سے انہوں نے اس خطے کی صورتحال کو ایکسپلین کیا. اینڈ دین ٹو تھنگس ہی کمپیئرڈ اینڈ ہی میڈ پیپل ٹو پٹ دیم سیلف دوز لیڈرز ٹو پٹ دیم سیلف ان ٹو دا پوزیشن بائی مینشننگ کہ اگر میں وہاں پہ ہوں, میرا خاندان, میں 55 دن سے بند ہوں, یہ تمام ظلم و جبر ہو, تو مجھے بھی موقع ملے گا, میں بھی گن لے کے نکلوں گا. He put those leaders into the position کہ if it happens to you what will you do. یعنی وہاں کی 11,000 عورتوں کو ریپ کیا گیا, 13,000 نوجوان بچوں کو وہاں سے اریسٹ کر لیا گیا. یہ جب وہاں سے کرفیو اٹھے گا, اس لیے کرفیو نہیں اٹھا رہے نا کہ وہاں پہ وائلنس ہوگی, جب ہوگی اور پھر کوئی برا واقعہ ہوگا تو مدعا کس پہ آ جائے گا؟ پاکستان کے پا جائے گا. دہشت گرد ہم نے پیدا کیے. دہشت گرد تو آپ نے اس بوتل میں ان کو بند کر کے آپ نے دہشت گرد پیدا کر دی. بہت خوبصورت طریقے سے اس نے انہوں نے اس پوائنٹ کو کیا, اور یعنی ہی پٹ دا لیڈرز ان ٹو دا پوزیشن کہ اٹ ہیپنس اف اٹ ہیپنس ٹو یو واٹ ول یو ڈو, کہ پاکستان کے اوپر اب الزام آئے گا. آف کورس دس واز ہز کنسرن وچ ہی ڈیفینیٹلی پٹ ان ٹو دا ورڈز اینڈ ان ایوری بڈیز مائنڈ. बहुत खूबसूरत तरीके से एड्रेस किया उन्होंने नरेंद्र मोदी को. लेट्स सी कि व्हाट इंडियन मीडिया सेज नाउ. नरेंद्र मोदी ने जितनी बात की थी उनका यूनाइटेड नेशंस की असेंबली में जो उनका खिताब था वाज एग्जैक्टली व्हाट ही सेड इन इन ह्यूस्टन. उसी को उन्होंने यहाँ पे आके ऑलमोस्ट वही बातें की थी कि हमने क्या क्या किया. प्राइम मिनिस्टर ने उनमें से कोई बात नहीं की. अगर मैं एज ए ह्यूमन बीइंग दिस इज़ व्हेन आई एनालाइज कि अगर उन्होंने इन अकाउंट्स की ट्रांसफ़र की बात की है तो नॉट टू किसी पार्टी के लिए अगेंस्ट नहीं की कि पाकिस्तान से पैसा भी ड्रेन हो रहा है. आज कश्मीर में जो वाकया हो रहा है कल कलाक उन्होंने ये कहा कि मेरे अपने मुल्क में इतनी प्रॉब्लम्स हैं मैं यहाँ नहीं आना था मगर मैं सिर्फ आपको बावर कराने के लिए आया हूँ कि एक मुल्क जो इंडिया से 7 गुना छोटा मुल्क है वी डोंट हैव नो चॉइस या तो हम सरेंडर कर दें और या फिर मर जाएं. बट वी बिलीव इन ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ एक अल्लाह है वहद अल्लाह शरीक है. देन वी विल फाइट टिल द डेथ और अगर हम मरेंगे तो फिर हम अल्टीमेटली एटम बॉम्ब का इस्तेमाल करेंगे. इट्स नॉट अ थ्रेट और अगर हम एटम बॉम्ब का इस्तेमाल करेंगे तो ये सिर्फ उस सरहद तक नहीं होगा इट विल लीव इफेक्ट्स. यहाँ से मैं आपको लेके जाना चाहती हूँ उस उनके उस सेगमेंट की तरफ यानी कोई मखलूक कमतर नहीं है. उन्होंने कहा कि अगर इंग्लैंड में 800,000 छोड़ें आप 8,000 कुत्ते भी बंद हो जाएंगे ना तो उन कुत्तों को बंद करने के लिए भी एक्टिविस्ट सामने आ जाएंगे. यहाँ तो इतने बेशुमार इंसानों को बंद किया गया अगर यहूदियों के साथ ऐसा हो तो क्या हो. अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो. और उन्होंने आलमी बरादरी को ख़बरदार किया कि अगर आप लोगों ने इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अगर मदाखलत नहीं की और जोहरी जंग होती है तो ये सिर्फ वहाँ तक नहीं रहेगा इट विल गो टू एवरीवेयर. यानी 80 लाख अफराद को जानवरों की तरह बंद किया है और अगर कर्फ्यू उठेगा. नाउ आर रिजर्वेशन इज कि हम पे बार बार कहा जाता है कि हम टेररिस्ट पैदा करते हैं. पाकिस्तान ने तो कीमत ही बहुत चुकाई है. हमें तो सबक पढ़ाया जाता है मुख्तलिफ तरीक़ों से. हमें तो ब्रेन वॉश किया जाता है कि कश्मीर को भूल जाओ तुम टेररिस्ट को कम करो. और भाई कश्मीर को हम कैसे भूल जाएं. अगर हम कश्मीर को भूल जाएंगे तो जिस दिन आपने कर्फ्यू उठाया चार बंदे जिस माँ के 4 बच्चों को पैलेट गन्स लग के उस माँ की आंखें चली गई हैं अगर वो कोई गलत हरकत कर लेगी या उसका बच्चा कोई गलत हरकत कर लेगा तो मलबा किस पे गिरेगा. पाकिस्तान के ऊपर आके गिरेगा कि पाकिस्तान ने ये टेररिस्ट भेजे. वी जस्ट वॉन्ट टू कन्वे आर पॉइंट ऑफ व्यू. बहरहाल अल्लाह ताला बेहतर करे. अल्लाह ताला इंसानियत के लिए बेहतर करे. आई हैव नथिंग अगेंस्ट इंडियंस. वी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. वी लव ईच अदर. वी आर नेबरिंग कंट्रीज. द प्रॉस्पेरिटी ऑफ बोथ कंट्रीज कैन मेक अ डिफरेंस ह्यूज डिफरेंस इन द वर्ल्ड. बट वी डोंट नीड एक्सट्रीमिस्ट्स. किस दहशतगर्दी की आप बात करते हैं. एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ही रेज दिस पॉइंट वेरी वेल. आप इमेजिन कीजिएगा आज कर्फ्यू है वहाँ पे. आप अपने आप को रखें. खुदा न खास्ता मेरा बेटा ही लव्स मी अलॉट मुझ पे कोई जुल्म करता है तो खुद ब खुद खून छलकता है और वो खून उसका बदला लेने के लिए नहीं. इट्स अ ह्यूमन नेचर यू कैन नॉट स्टॉप इट. तो फिर इंडिया फौरन तौर पे पाकिस्तान को ब्लेम कर देगा. हमारा जीना महाल कर देगा. वी वांट टू लिव एमिकेबली एंड आई रिक्वेस्ट माय इंडियन ब्रदर्स प्लीज ट्राई टू लिसन टू दिस स्पीच. ट्राई टू अंडरस्टैंड. मेक योर लीडर्स अंडरस्टैंड इट. आई थैंक ऑल आर स्पॉन्सर्स. इतनी लंबा सेगमेंट जो हमने आपके साथ शेयर किया. आई हैव अ वंडरफुल ब्रदर ऑफ माइंड दैट इज आपके पास कॉलर्स होंगे.
नो
प्राइम मिनिस्टर की आज की स्पीच को हमने आपके साथ शेयर किया. जनाब नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पहले बोले. उन्होंने यकीनन अपनी जो उनकी कारकर्दगी है उसको सराहा. उसको तमाम दुनिया के सामने पेश किया. आई डोंट थिंक सो एनीवेयर इन द वर्ल्ड एनीबडी इज कंसर्न्ड व्हाट आई डिड. बट इंटरनेशनली इट्स दैट प्लेटफॉर्म व्हाट द पीपल ऑफ द वर्ल्ड और द लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड दे हैव टू डिलीवर. Grill and a Hut, हमारे आज के स्पॉन्सर हैं. आई थैंक ब्रदर, ही इज बीन सिटिंग हियर फॉर लॉन्ग टाइम. ऑफ कोर्स इट्स हिज बिजनेस. ग्रिल एंड हट मिसेस सागा में है, दैट इज ब्रैमली एंड टॉमकन के इंटरसेक्शन पे. 6 बजे तक हम आपके साथ टेलीविजन पे शामिल हैं. प्रोग्राम में आपको देखने का बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम को वॉच करने का बहुत शुक्रिया. मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, वॉट एवर योर फीडबैक, गुड और बैड, इवन दो यू नो वी हैव वन बैड फीडबैक एज वेल, जस्ट प्लीज़ गिव योर फीडबैक ऑन आवर फेसबुक. आई रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो इसके साथ एक थंब बना हुआ है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा. इवन दो इट्स डेमोक्रेसी, इफ यू हैव एनी कॉमेंट, डू गिव योर कॉमेंट. लेके जाना चाहती हूँ आपको मैं ग्रिल एंड हट पे, जहाँ से अदना हमारे इमरान भाई, इमरान भाई हमारे साथ हैं. व्हाट इज अवेलेबल एट द ग्रिल एंड हट टुडे? अस्सलाम वालेकुम.
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह.
जी सर, बताइए ग्रिल एंड हट के बारे में बताइए.
भाई आज जो आपने सुनाया ना, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, दिस इज अमेजिंग.
बहुत से लोगों ने, जाहिर है सबको पता था कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने यूनाइटेड नेशंस में जाके बोलने. आई रिक्वेस्ट अपने ब्रदर्स सिस्टर्स फैमिलीज को प्रोग्राम ये आवाज़ के बारे में ज़रूर बताइए. टेलीविजन आप खुद वॉच कीजिएगा, मगर जिन लोगों ने नहीं सुनी, वी जस्ट वांटेड टू प्रोवाइड देम दिस प्रिविलेज कि आप गाड़ियों में बैठे हुए लिसन व्हाट आवर प्राइम मिनिस्टर सेड. एंड मेरे और आपके दिल की तर्जुमानी उन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में की.
मैं ना आज और कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ फ्यू मिनट्स, चंद मिनट एक चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा. अभी जो खान साहब ने कही कि असल इंसान नहीं है, असल कमांड है. अभी थोड़ी देर पहले ना हमारे एक उस्ताद, मैं उनके साथ बैठा था तो वो एक वाक्या सुना रहे थे. वो वाक्या मैं मजीद भाई शेयर करूँगा और उसके बाद इंशाल्लाह वी विल. कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उस वक्त हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे थे, तो एक साहब आए. ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्कॉलर ऑफ जुडाइज़म. उनका नाम ज़ैद बिन सानिया. तो उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कर्ज लिया था 60 किलो खजूरों का. तो वो तकाजा 2 दिन पहले रखा,
गिवन टाइम से 2 दिन
पहले रखा. और वो तकाजा इस तरह रखा कि आए एंड ही वॉज यूजिंग एन अब्यूजिव लैंग्वेज एंड ही यूज हिज हैंड्स एज वेल. तो जब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु विटनेस दिस, तो आपने थोड़ी सी झगड़ालू अंदाज में उनके साथ गुफ्तगु की. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो इसको इसका असल वापस कर दिया जाए और उस पर 20 किलो एक्स्ट्रा दे दिया जाए. तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिक्वेस्टेड एज अ क्वेश्चन, ओ प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, व्हाई शुड वी गिव हिम 20 किलोज एक्स्ट्रा? ही सेड द वे यू रिब्यूटेड, द वे यू रिब्यूटेड, द वे जिस तरह से आपने उनके साथ झगड़ा किया, उनकी जो ह्यूमिलिएशन, वी कैन नॉट अफोर्ड टू ह्यूमिलिएट एनी वन, सो वी हैव टू पे बैक विद द मार्जिन ऑफ प्रॉफिट इन ऑर्डर टू शो हाउ मच वी आनर एंड रिस्पेक्ट. तो हज़रत ज़ैद बिन सानिया जब वापस गए, उन्होंने वो 60 किलो खजूरें ली और 20 किलो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक्स्ट्रा दी, तो वो वहीं पे इस्लाम ले आए. तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, ये क्या है? अंदर आप झगड़ रहे थे, मारा मारी हो रही थी, आप तकाजा कर रहे थे, यहां आप इस्लाम ला रहे हैं. तो फरमाया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गेव अस In Torah, when my brother Muhammad sallallahu alaihi wasallam will come, one of his sign of the command of Allah will be, people will talk with ignorance, and he will talk with tolerance.
Sahi.
People,
ignorance se baat karenge.
Ignorance ke saath baat karenge, aur jo education, the law of Allah is you must talk back in tolerance. تو بھائی جی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ کرے یہ چیز آج پوری انسانیت میں آ جائے.
Which is quite difficult.
Which is quite difficult, but this is
21st century. The only thing what we lose is our patience. Anyways, Grill and Heart سے عمران بھائی ہیں, اور عمران بھائی آپ نے یہ مثال دی ہے, میں نے آپ سے کہا رہا کہ ہمارے درمیان غلط احادیث پھیلانے والے لوگ بھی آ گئے. جیسے آپ نے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور آپ کو سبق ہی معاف کرنے کا دیا ہے آپ نے, بلکہ یہ بھی ہے کہ اگر میں کسی انسان کو معاف نہیں کر سکتی تو میں کیسے ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے معاف کر دے. ایک مس انڈرسٹینڈنگ, یا وہ کہتے ہیں نا ہمارے درمیان غلط, کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ایک کے بارے میں کہا کہ اس کو توبہ استغفار کہ مروا دیا جائے. آئی ڈاؤٹ اٹ ویری مچ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
Never.
کوئی ایسا نیور. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, طائف کے لوگوں نے جتنا آپ پہ ظلم کیا تھا کہ آپ لہو لہان ہو جاتے تھے, مگر آپ نے ان کے لیے بھی بد دعا نہیں کی تھی. آپ مکہ معظمہ میں تشریف لائے تو آپ نے ہر ایک کو معاف کر دیا تھا, کیسے آپ ایسا کر سکتے تھے؟ تو ہمارے درمیان آج عمران خان صاحب نے, پرائم منسٹر آف پاکستان نے بڑی خوبصورت بات کی کہ دنیا کے لیڈر خاموش ہیں. وہ اربوں ڈالر کی یہ ایکسچینج کاروبار کا ذکر کر رہے ہیں, وہ ہیومینٹی کا ذکر ہی نہیں کر رہے. ریڈیکل اسلام کا ذکر آیا. واٹ از ماڈریٹ اسلام؟ واٹ از ماڈرن اسلام؟ اسلام از اسلام. لا الہ الا اللہ, اللہ ایک ہے, واحد لا شریک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی. That's what اسلام is. مگر جو مسلمان لیڈروں نے آج تک اس چیز کو جسٹیفائی نہیں کرنا چاہا, کیونکہ دنیا جہان, اور وہ کہتے ہیں نا منی ٹاکس, دیٹس آل واٹ اٹ از, منی ٹاکس, کہ کاروبار کی ضرورت ہے اور اس کاروبار کی ضرورت کے لحاظ سے ہم اپنی ترجیحات بدل لیتے ہیں. مگر کوئکلی آپ بتا دیجیے گا گرل اینڈ ہارٹ
بھائی, بس آج میرا اتنا ہی ہے.
آپ امیجن کریں, اٹس وی اسٹارٹڈ 4 o'clock, اٹس 6:45, اگر 2 hours کمرشل فری پروگرام جائے گا, اٹ از اے کاسٹ انوالو, اور آپ جیسے اسپانسرز کا بہت شکریہ دیں.
اللہ کو جزائے خیر دے, اللہ پوری انسانیت کو جوڑ دے.
کوئکلی اپنا ایڈریس نمبر گرل اینڈ ہارٹ بتائیے, اور یہ بتا دیجیے کوئکلی, اف سمبڈی کمز ٹو یو اینڈ گیو دا ریفرنس آف ساز آواز, واٹ از ان اٹ فار؟
1935 ڈیو روڈ, یونٹ 15. آج جو آپ نے ماشاء اللہ, یا جو ایک انسانیت کو جوڑنے کے واسطے آپ یہ جو 2 hours کا ایک پروگرام کر رہی ہیں, آج جو بھی آئے گا میری طرف سے, فار دا سیک آف ہیومینٹی, ایوری تھنگ از فری. جزاکم اللہ.
او مائی گاڈ, نو اتنا نہ کریں. آپ کے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کے ایکسپینسز ہیں. میں صرف کینیڈا میں رہنے والے اپنے تمام بھائیوں بہنوں کو کہتی ہوں, اگر کوئی محبت کا پیغام دے, آئی انڈرسٹینڈ وطن سے محبت بہت ضروری ہے, مگر اگر کوئی پیغام کا دے تو جسٹیفائی کریں واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. چند ایک اسپانسرز ول کم بیک. اسٹوڈیو کا نمبر 416-620-1778. میرا نام عارفہ, مظفر سٹی اسکیپ سے میں وابستہ ہوں. آپ نے کسی پراپرٹی کو خریدنا ہے, یا اگر آپ اپنے گھر کو بیچنا بھی چاہتے ہیں, گیو می اے کال. آپ اگر آپ گھر لینا چاہتے ہیں, ایون دین یو کین گیو می اے کال. میرا نمبر 6478986245. آپ کے ملنے والوں میں الحمد للہ دیر آر سو مینی ایجنٹس, اور ایجنٹس آر گڈ. آف کورس اف یو آر ویری کلوز بائی سمبری دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری, مگر آپ اپنے دوست احباب کو بتائیے. اگر آپ گھر یا کانڈومینیم خریدنا چاہتے ہیں, گیو می اے چانس. میرا نمبر 6478986245. سٹی اسکیپ کے ساتھ میرا تعلق ہے, اینڈ آئی پرامس آئی ول گیو یو دا بیسٹ آف دا بیسٹ سروس. تھینک یو.
کہیں مارگیج نہیں مل رہی, جھٹ پٹ مارگیج دلا کے ساری مشکل کر دیں گے آسان. 11 سال سے زیادہ تجربہ اور ایک بھروسہ مند نام. हर किस्म की रेजिडेंशियल या कमर्शियल मॉर्गेज के लिए मॉर्गेज अलायंस की जैस्मिन परमार से राब्ता करें। रीफाइनेंसिंग ऑप्शंस, रिन्यूअल ऑप्शंस, मॉर्गेज डिफिकल्टीज, डाउन पेमेंट इश्यूज, सेल्फ एम्प्लॉयड, प्राइवेट फंड्स, सेकेंड मॉर्गेज के लिए कॉन्टेक्ट करें मोस्ट ट्रस्टवर्दी जैस्मिन परमार से। नंबर टू कॉल 6479235659, 6479235659, लाइसेंस नंबर 10530। इंश्योर प्रो फाइनेंशियल सर्विस से फजल वदू, जिनका है 27 साल से लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस। आजकल के दौर में तो कुछ भी फ्री नहीं मिलता, इवन मशवरा भी। सवाल छोटा हो या बड़ा, आप कॉल कर लीजिए, मशवरे की कोई फीस नहीं। चाहे लेनी हो लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल, डिसेबिलिटी, ट्रेवल और अदर इंश्योरेंस, टैक्स प्लानिंग और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, देर ना करें कि इससे पहले देर हो जाए। फजल वदूद को कॉल कर लीजिए 6472864285।
अस्सलाम वालेकुम, मैं शबाहत अली फ्रॉम मेगा मनी एक्सचेंज। हम तकरीबन 18 साल से मनी ट्रांसफर का काम कर रहे हैं। अगर आपको पाकिस्तान पैसे भेजने हैं या मंगवाने हैं तो हमसे रابطہ कायम करें। हमारा फ़ोन नंबर है 9052794754 और हमारा एड्रेस है 4196 कॉथरा रोड, मिसिसागा।
लो भाई, अब तलाश हो गई खत्म। बहुत ही खूबसूरत और अफोर्डेबल बैंक्वेट हॉल, किसी भी शादी ब्याह, म्यूजिकल, बाजार या कॉर्पोरेट इवेंट के लिए 50 से ज्यादा अफराद के बैठने की जगह, स्वागत बैंक्वेट हॉल, 6991 मिल क्रीक ड्राइव इन मिसिसागा, मिल क्रीक और डेरी का इंटरसेक्शन, 9058219688, 9058219688।
खाने का इंतजाम तो बहुत ही जबरदस्त है और मेन्यू भी कमाल का है, बनाया भी कितना लजीज है।
ये सब कमाल है किराना हट का। दावत हो तो केटरिंग बहुत खूब करते हैं, और अगर वैसे बाहर खाना खाने को दिल चाहे तो समझो हर उम्र की पसंद किराना हट पर मौजूद। और हाँ, एक और बात, इस खाने के बाद गारंटीड नो हार्टबर्न।
किराना हट का मुझे भी नंबर दें, हमारे यहाँ कोई ना कोई मेहमान आता ही रहता है।
किराना हट मिसिसागा में, बस कॉल कर लीजिए 9054058383, 4058383।
हिप से डेंटल कवरेज नहीं, मगर साहब आप परेशान मत होइएगा, डॉक्टर फियाज कुरैशी अब दो क्लिनिक से आपको सर्विस देते हैं, किसी और जगह जाने की जरूरत नहीं है। तमाम डेंटल ट्रीटमेंट अंडर वन रूफ, रूट केनाल, ऑर्थोडॉन्टिक्स ट्रीटमेंट है, ब्रेसिस है, सर्जिकल एक्सट्रैक्शन है, तो बस सिर्फ एक ही नाम, डॉक्टर फियाज कुरैशी, मिसिसागा और स्कारब्रो। आप अपनी मर्जी से अपॉइंटमेंट बनाइए, खवातीन के लिए पर्दे का खास इंतजाम और फीमेल डेंटिस्ट। 9052325678, 2325678, डॉक्टर फियाज कुरैशी।
नाइग्रा फॉल की सैर करने के बाद जाइए टेस्ट ऑफ बॉम्बे, ऑथेंटिक पाकिस्तानी एंड इंडियन हलाल कुजीन, वेज नॉन वेज बारबेक्यू आइटम्स और खास आइटम कीमे वाले पराठे। एंजॉय करें ताजा, मजेदार और दिलकश माहौल में। टेस्ट ऑफ बॉम्बे इन नाइग्रा फॉल्स, 5780 फेरी स्ट्रीट, नाइग्रा फॉल्स, 9053575946, 9053575946।
कमर्शियल या रेजिडेंशियल पेंटिंग के लिए वेरी प्रोफेशनल पेंटिंग कंपनी, हाई क्वालिटी पेंटिंग एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस, इंटीरियर एक्सटीरियर या हाउस पेंटिंग, स्टको या वॉलपेपर रिमूवल, सफाई का कोई काम हो, और हाँ, सीनियर्स के लिए खास डिस्काउंट। ऑनेस्ट रिलायबल सलीम सदीकी से राब्ता करें 6472711974, 647-271-1974।
पाकिस्तान पैसे भेजने हैं तो सिर्फ और सिर्फ भेजें एबल एक्सप्रेस इंटरनेशनल के थ्रू, क्योंकि इनके पास है रिलायबल, सेफ और सिक्योर बैंकिंग चैनल्स। चाहें तो दूसरी फॉरेन करेंसी सेल और परचेस भी करें। फॉर फास्ट एंड इंस्टेंट मनी ट्रांसफर थ्रू एबल एक्सप्रेस इंटरनेशनल कॉल एट 416-230-4444, 416-230-4444।
जी सामने कराम, वेलकम बैक टू रेडियो साजो आवाज़। 5:53 हमारी घड़ियों में हो चुके हैं, और साहब लिए आपको चले आपके पते की बात करवाने के लिए। करण जी मेरे साथ हैं और कोई नया प्रमोशन लेके आए हैं। करण जी, वेलकम टू रेडियो साजो आवाज़, कैसे हो सर आप?
बहुत अच्छा हूँ माजिद भाई, बहुत शुक्रिया। और वाकई ही आपने बहुत अच्छी इंट्रोडक्शन दी है। लिसनर्स के पते की बात है, पते की बात इसलिए है क्योंकि ये जो हम प्रोजेक्ट इस बार लेकर आए हैं ये बहुत खास है माजिद भाई, और ये प्री कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। बिल्डर का नाम सुनिएगा, तो आप खुश हो जाइएगा क्योंकि ये मैंकीज बिल्डर का प्रोजेक्ट है और मैंकीज कनाडा के टॉप 3 बिल्डर्स में आता है। माजिद भाई 100 एकड़ जमीन है मैंकीज की, लोकेशन है बिल्कुल हॉट हाईवे 7 और हाईवे 400 के ऊपर, हाईवे 7 और हाईवे जेन स्ट्रीट भी कह सकते हैं आप, वहां पर 100 एकड़ जमीन है मैंकीज की जिसमें से उन्होंने पहली 10 एकड़ की रिलीज की है और उस 10 एकड़ की रिलीज के अंदर उनकी टाउन हाउसेस की सबडिविजन आ रही है जो कि अर्बन टाउन हाउसेस है, स्टैक टाउन हाउसेस, ठीक है। माजिद भाई इसकी जो प्राइस निकाली है, पिछले हफ्ते की बात है कि ब्रैम्पटन के अंदर टाउन हाउस निकले थे और लाइन लग गई थी और अपने कंज्यूमर्स लेना चाहते थे और उन्होंने लाइन लगा के और सबको नहीं मिल पाया था, उसकी जो प्राइस पर स्क्वायर फीट थी वो $620 पर स्क्वायर फीट थी उन टाउन हाउसेस की। और ये वॉन के अंदर हमारी इसी प्राइस रेंज के अंदर, एग्जैक्ट वॉन लोकेशन, प्लीज आप जो है ना इसको ध्यान दीजिएगा, वॉन के अंदर हमने रिलीज किया प्रोजेक्ट जो कि लोअर प्रॉपर्टी टैक्स देन ब्रैम्पटन है, जो कि कम्यूट, वाजिद भाई नया वॉन मेट्रोपॉलिटन सबवे जो बना है वो बिल्डिंग के सामने बना है, बिल्कुल जहां पे बिल्डिंग खड़ी होनी है उसके बिल्कुल सामने सबवे है। कनाडा में सिर्फ 1% बिल्डिंग्स हैं जिसके सामने सबवे लगता है, दिस इज वन ऑफ दोस, ठीक है। सो लोकेशन उम्दा, उसके बाद जो अर्बन टाउन हाउसेज है उनकी मैं प्राइस की बात करूंगा, जो ब्रैम्पटन में प्राइस लगी थी उसी प्राइस के अंदर हम 600 अपर 600,000 से ये प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। अपर 600,000 का मतलब है $6,85,000 के अंदर आपको ये पूरा 2 लेवल का नीचे लिविंग डाइनिंग किचन और ऊपर बेडरूम्स और वॉशरूम्स के साथ घर मिल सकता है। माजिद भाई नंबर 3 इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि डिपॉजिट जो है मैंकीज का 20% था पर टीम 100 एकर्स से हमने इसको सिर्फ 10% पे ब्रेक डाउन करवाया, सो 10% डिपॉजिट ओनली, क्लोजिंग इज 2022, लेट योर इन्वेस्टमेंट ग्रो, 3 साल है, 3 साल में आपकी इन्वेस्टमेंट पूरी ग्रो कर सकती है और उसके बाद आप असाइनमेंट क्लॉज के अंदर इसको बेच सकते हैं। असाइनमेंट क्लॉज $5,000 हमने करवाया फ्री असाइनमेंट क्लॉज करवाया हमने आपके लिए और $45,000 की जो पार्किंग है वो भी हमने बिल्कुल फ्री करवाई है, सो इंसेंटिव की भरमार है। उसके बाद क्वार्ट्ज काउंटर टॉप्स, हार्डवुड की फ्लोर्स, ओक स्टेयरकेस और पांचों की पांचों स्टेनलेस स्टील अप्लायंसेस भी बीच में मौजूद है। सो माजिद भाई इंसेंटिव उम्दा, प्राइस बिल्कुल लो और लोकेशन वेरी हॉट और कल सुबह 11 बजे बिल्डर इस प्रोजेक्ट की लॉन्च कर रहा है होटल हिल्टन गार्डन इन में। होटल हिल्टन गार्डन इन का जो एड्रेस है वो 3201 हाईवे 7 और 1 है, सो अगर आप एड्रेस जानते हैं बहुत बढ़िया, 11 बजे पहुंचेगा जरूर क्योंकि 24 लॉट्स हैं और लाइन लगाकर बिकेंगे बट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हम आपके लिए ब्लॉक कर सकते हैं। अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं, फर्दर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं और अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो जस को कॉल कर सकते हैं आप एंड जस कैन टेक केयर ऑफ यू। एंड मजिद भाई द नंबर टू कॉल इज 905-782-8700। एक बार फिर मजिद भाई, हाईवे 7 हाईवे 400 वॉन के अंदर वेरी हॉट लोकेशन राइट अक्रॉस द सबवे, टाउन हाउसेज अर्बन टाउन हाउसेज लॉन्च हो रहे हैं, मैंकीज बिल्डर है और पार्किंग और असाइनमेंट क्लॉज फ्री है, ना चूकिएगा इस अपॉर्चुनिटी को कल सुबह 11 बजे सैटरडे को वॉन के अंदर हिल्टन गार्डन होटल हाईवे 7 के ऊपर 3201 लॉन्च होगी, मैं वहां खुद मौजूद हूँ। तो प्लीज अगर आप कॉल करके डिटेल्स देना चाहते हैं कॉल कीजिए 905-782-8700।
जी साहब, जैस को कॉल कर लें आप 905-782-8700, 905-782-8700 जैस का फोन नंबर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर।
शुक्रिया सर, थैंक यू।
साहब मैं बात करते चाहूँ डैन बार्नेबिक की। डैन बार्नेबिक प्रोफेशनल लीगल सर्विसेज के लिए साहब, ये अगर स्मॉल क्लेम कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं अप टू $25,000 तो आप लीगल सर्विसेज के लिए डैन बार्नेबिक को कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके क्रेडिट रिपोर्ट में कुछ एरर्स आ गए हैं, कई दफ़ा होता है क्योंकि हम क्रेडिट रिपोर्ट्स चेक नहीं करते, मगर क्रेडिट रिपोर्ट्स पर अगर कुछ एरर्स आ गए हों तो डैन बार्नेबिक को आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया है और कर्जे देने से कासिर हैं आप, तो भाई आप के कर्जे को भी ये काफ़ी हद तक माफ़ करवा देंगे डैन बार्नेबिक। और स्मॉल क्लेम एक्शन, स्टॉप हरासिंग कॉल्स, करेक्ट योर क्रेडिट रिपोर्ट्स मिस्टेक्स एंड सेटल योर डेट्स, ये जो है डैन बॉडविक आपके लिए अपनी खिदमत हासिल करते हैं. फ़ोन नंबर नोट कर लें डैन बॉडविक का, 416-515-2019 इनका फ़ोन नंबर है. एक खूबसूरत कलाम की तरफ लिए चलूँगा आपको मैं, मगर इससे पहले हमें जो टीवी पे और फेसबुक पे वॉच कर रहे हैं भाई, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बे इंतहा शुक्रिया आप लोगों का वॉच करने का. एंड इंशाल्लाह ताला मंडे को फिर 4 से 6 बजे तक हम आपके साथ होंगे. और रेडियो वाले जो हमें रेडियो पे सुन रहे हैं भाई, हम 7:30 बजे तक आपके साथ होंगे. 7:30 बजे तक हमारा साथ ना छोड़िएगा आप. 7:30 बजे तक इंशाल्लाह ताला हम और आप साथ साथ होंगे टीवी एंड फेसबुक.